वो सर्वेंट वहां से जाता उससे पहले ही जानवी और पृथ्वी अपने कमरे से बाहर आते हैं और हॉल में आ जाते हैं। आस्तिक जानवी से कहता है, जानवी मैंने तुम्हें कॉफी बनाने के लिए कहा था। जानवी अपने सर पीटते हुए कहती है, अरे भाई साहब आई एम सॉरी, वो मुझे ना पृथ्वी ने बुला लिया था तो मेरे दिमाग से ही निकल गया था कि मुझे आपके लिए कॉफ़ी बनानी है। लेकिन आप किसी सर्वेंट को भी तो कह सकते थे। आस्तिक के भाव कठोर हो गए और उसने गुस्से में सबको देखते हुए कहा, क्या हो रहा है यहाँ पर? मैं इस घर में किसी के लिए मायने रखता भी हूँ या नहीं रखता हूँ? क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? सब मुझसे ऐसा व्यवहार क्यों करें जैसे कि मैं इस घर में हुई नहीं? ताई जी गुस्से में आस्तिक को देखकर कहती हैं, आस्तिक कैसी बातें कर रहे हो तुम सबके साथ? मत भूल इस घर में बहू बेटियां भी हैं, तुम उनके सामने इस तरीके से ऊंची आवाज में कैसे बात कर सकते हो, और वो भी खासकर तब जब कीर्ति प्रेग्नेंट है तो? आस्तिक ने गुस्से में कहा, तो और मैं क्या करूं ताई जी, आप सबका व्यवहार नहीं देख रहे हैं? घर में नौकरों की फौज है लेकिन फिर भी मेरा काम करने के लिए किसी के पास समय ही नहीं है। अपनी छोटी छोटी चीजों के लिए मुझे लोगों की तरफ देखना पड़ता है। इस पर ताई जी ने और ज्यादा गुस्सा करते हुए कहा, आवाज नीचे रखकर बात करो। और क्या कह रहे हो, घर में इतने सारे नौकर हैं तो तुम अपना काम नौकरों को क्यों नहीं कहते हो करने के लिए? वो खुशी खुशी तुम्हारा काम करेंगे। इसके लिए तुम घर की औरतों से क्यों उम्मीद कर रहे हो कि वो तुम्हारा काम करेंगे? इस घर में कौन है जो तुम्हारा काम करती है? जहां तक मुझे पता है घर की कोई भी औरत तुम्हारी सेवा के लिए तो नहीं है। आस्तिक का चेहरा जो अभी तक गुस्से से भरा हुआ था वो अचानक से शांत पड़ जाता है और वो हैरान नजरों से ताई जी को देखने लगता है। तो ताई जी गुस्से में आस्तिक को देखकर कहती हैं, कीर्ति की ऐसी हालत है कि हम उसे कुछ कह सकते हैं करने के लिए? वैसे भी उसका पति इस वक्त यहाँ नहीं है, ऐसे में वो हमारी जिम्मेदारी है और प्रणाली उसके तो नखरे ही अलग है, इससे तो किसी काम की उम्मीद की भी नहीं जा सकती है। पता नहीं अपने ससुराल में क्या करती है। और जहां तक बात रही जानवी की, तो एक बात बता दूं तुम्हें आस्तिक, जानवी पृथ्वी की पत्नी है और उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी पृथ्वी के लिए है। आस्तिक हैरान नजरों से ताई जी को देखने लगता है तो ताई जी कहती हैं, यहाँ पर सब वैसे ही हैं जैसे पहले थे, कोई नहीं बदला है और कुछ भी नहीं बदला है। अगर कुछ बदल रहा है तो वो है तुम्हारा व्यवहार, और अगर तुम नहीं बदल रहे हो तो देखो अपनी आंखें खोलकर, यहाँ पर सब कुछ पहले जैसा ही है। सब ऐसे ही हैं जैसे पहले थे, पहले भी कोई तुम्हारा काम नहीं करता था और अभी नहीं कर रहा है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अब तुम्हें अरुणिमा की आदत हो गई है। वो बेचारी तो अपना पत्नी धर्म बहुत अच्छे से निभाती थी, पर उसी के साथ ही अधर्म हो रहा है। आस्तिक ताई जी को देखने लगा तो ताई जी उठती है और सबको देखकर कहती है, मैं कल यहाँ से जा रही हूँ, वैसे भी यहाँ पर रहने का अब मेरा मन नहीं करता है। जिस घर से लक्ष्मी नहीं रह सकी उस घर का वैभव लेकर और मैं कितने दिन जी पाऊंगी? और हाँ, मैं वापस नहीं आऊंगी। अगर तुम में से किसी को मुझे मिलना होगा तो मेरे महिला आश्रम में आकर मुझसे मिल लेना। ऐसा कहकर ताई जी अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती हैं। आस्तिक बस अपनी हैरान नजरों से ताई को देखा ही रह गया था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ताई जी ऐसा भी कह जाएगी। प्रणाली अपनी जगह से खड़ी होती और कहती है, मैं भी बहुत दिनों से यहीं पर हूँ, वहाँ पर मेरी चाची सास ने कुछ नए कांड जरूर सोचे होंगे। वैसे सच कहूँ तो अपना घर अपना ही होता है, चाहे जैसी भी हो, मेरी चाची सास जैसी भी हैं, लेकिन अगर वो मेरे खिलाफ कुछ साजिश नहीं सोचती हैं और मैं उन्हें कुछ सुना नहीं देती हूँ, तब तक हम दोनों का खाना नहीं हजम होता है। आस्तिक काश का अपनी आँखें बंद करता है और उठकर अपने कमरे में चला जाता है। सच में ये कमरा अरुणिमा के जाने के बाद सिर्फ कमरा ही बनकर रह गया था। आस्तिक का मन करता था इस कमरे में जितनी भी चीजें हैं उन सबको आग लगा दे, क्योंकि यहाँ मौजूद हर एक चीज उसे अरुणिमा की याद दिलाती थी। एक और महीना गुजर गया और अरुणिमा की प्रेगनेंसी को 6 महीने हो गए थे। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, पेशेंट 6 महीने की प्रेग्नेंट है और इस वक्त उनका तनाव लेना उनके लिए खतरनाक है। डॉक्टर ने मिश्री से ये बात कही थी जो हैरान नजरों से डॉक्टर की बात सुन रही थी, और मिश्री के साथ इस समय सक्षम था। सक्षम ने कहा, डॉक्टर साहब वो ठीक तो है ना? अब कोई चिंता की बात तो नहीं है ना? माँ और बच्चे दोनों सही सलामत तो है ना? डॉक्टर ने कहा, माँ और बच्चे अभी तो ठीक है और पेशेंट को जल्दी होश भी आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको वार्न करती हूँ, वो बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस ले रही हैं जिनकी वजह से बच्चे को नुकसान हो सकता है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, आप उन्हें टाइम पर देते रहिएगा। डॉक्टर के रूम से बाहर आने के बाद मिश्री के आंसू बह रहे थे। सक्षम ने मिश्री को देखकर कहा, मिश्री अपने आप को संभालो, देखो अरुणिमा को इस वक्त हमारी ज़रूरत है, अगर तुम ऐसा करोगी तो अरुणिमा को कौन संभालेगा? मिश्री अपने आंसू पूछती। सक्षम और मिश्री दोनों अरुणिमा के कमरे में जाते हैं जहाँ पर वो बेहोशी की हालत में लेटी हुई थी। अरुणिमा की आंखें भले ही बंद थी लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ वही सब बातें गूंज रही थी जो पिछले 1 महीने से वो देख रही थी। आस्तिक का वो कहना कि उसकी माँ ने खून किया है और फिर आस्तिक की माँ की डायरी में उनके सच का सामने आना, ये सब बातें अरुणिमा के दिमाग को पूरी तरह से ब्लैक कर चुकी थी। और उसके बाद कुछ धुंधले शब्द अरुणिमा के सामने आते हैं, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैं तुम्हारे बाप से नफरत करती थी, इसीलिए तुमसे भी नफरत करती हूँ, मैं तुझे मार डालूंगी जैसे तेरे बाप को मार डाला। अरुणिमा की सांस उल्टी चलने लगी थी। ये कुछ ऐसे शब्द थे जो उसे अपने सपने में नजर आ रहे थे, लेकिन कोई शक्ल नहीं थी, सिर्फ आवाज ही थी जो उसे परेशान कर रही थी। उसके चेहरे पर पसीना आ जाता है और वो जोर जोर से हांफने लगती है। तभी उसे अपने पास किसी की आवाज सुनाई देती है। अरुणिमा एक झटके से अपनी आंखें खोलता है तो मिश्री और सक्षम को अपने पास देखती है।